की श्रृंखला में आठवें स्कंद के नवे अध्याय पर चर्चा है। इसका एक महत्वपूर्ण श्लोक है, इसको दोहराएंगे। एवं सुरा सुर गण समदेश काल हेत्वर्थ कर्म मतयो विफले विकल्पा तत्रामृतं सुरगणा फलमञ्जसा यत्पादपङ्कजरजः शयनान् दैत्याः एवं सुरासुरगणः समदेशकालः हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसापो यत्पादपङ्कजरजः शयनान् दैत्याः एवं सुरासुरगणः समदेशकाल हेत्वर्थ कर्म मतयोपि फले विकल्पाः तत्रामृतं सुरगणः फलमञ्जसापु यत्पादपङ्कजरजः शयनान् दैत्याः सुरगणः समदेशकालः एवं इस प्रकार सुर देवता असुर गणाः तथा असुर सम समान देश स्थान काल समय हेतु कारण अर्थ उद्देश्य कर्म कर्म मतयः अभिलाषा अपि यद्यपि एक फले फल में विकल्पाः समान नहीं तत्र वहां पर अमृतम अमृत सुरगणा देवता फलम फल अंजसा आसानी से पूरी तरह आपुः प्राप्त यत् जिससे पाद पंकज भगवान के चरण कमलों की रजह केसर की धूलि श्रयणा आश्रय ग्रहण करने या वर प्राप्त करने से न नहीं दैत्याः असुरगण। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि में शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके, किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मनवांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। तात्पर्य, भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। भगवान परम न्याय करता है, जो विभिन्न मनुष्यों को उनके चरण कमलों की शरण में जाने के अनुसार पुरस्कृत करते या दंड देते हैं। अतएव ये वस्तुतः देखा जा सकता है कि यद्यपि कर्मी तथा भक्त एक जैसे स्थान पर एक ही काल में एक ही जैसी शक्ति तथा एक सी अभिलाषा से कार्य करते हैं, किंतु उन्हें पृथक पृथक फल प्राप्त होते हैं। कर्मी जन्म मृत्यु के चक्र में बंधकर विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हैं, कभी ऊपर जाते हैं तो कभी नीचे, और इस तरह कर्म चक्र में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किंतु भक्त भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पण करने के कारण कभी भी अपने प्रयासों में असफल नहीं होते। यद्यपि वे बाह्य रूप से कर्मियों की तरह ही कर्म करते हैं, किंतु वे भगवत धाम को वापस जाते हैं और प्रत्येक प्रयास में सफल होते हैं। असुरों या नास्तिकों को अपने प्रयासों पर भरोसा रहता है, फिर भी वे अहर्निश कठोर परिश्रम करके भी अपने भाग्य से अधिक प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु भक्त कर्म फलों को पार करके बिना प्रयास के ही अद्भुत फल प्राप्त कर सकते हैं। यह भी कहा गया है, फले न परिचीयते। किसी कार्य की सफलता या असफलता उसके फल से जानी जाती है। ऐसे अनेक कर्मी होते हैं जो भक्तों के वेश में रहते हैं, किंतु भगवान उनके प्रयोजन को जान सकते हैं। कर्मी जन भगवान की संपत्ति का उपयोग अपनी स्वार्थपूर्ण इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं, किंतु भक्त उसे ईश्वर की सेवा में लगाना चाहते हैं। अतएव भक्त सदैव कर्मी से पृथक रहता है, भले ही कर्मी जन भक्तों का वेश बना लें। इसकी पुष्टि भगवद गीता में यूं हुई है, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। जो भगवान विष्णु के लिए कर्म करता है वह इस भौतिक जगत से मुक्त होता है और इस शरीर को त्याग कर भगवत धाम को जाता है। किंतु कर्मी बाह्य रूप से भक्त जैसा कर्म करने पर भी अपने अभक्तिमय कर्म में फंस जाता है और इस तरह संसार के क्लेशों को भोगता है। इस तरह कर्मियों तथा भक्तों द्वारा प्राप्त फलों से भगवान का अस्तित्व समझा जा सकता है। जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के साथ भक्तों की तुलना में भिन्न रूप से व्यवहार करते हैं, अतः श्री चैतन्य चरितामृत में करचैत कहते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत। इंद्रिय तृप्ति चाहने वाले कर्मी, ब्रह्म में विलीन होने की मुक्ति की अभिलाषा करने वाले ज्ञानी तथा योग शक्ति में भौतिक सफलता की खोज करने वाले योगी, ये सभी अशांत रहते हैं और अंततो गत्वा निराश हो जाते हैं। किंतु भक्त जो अपने किसी निजी लाभ की आशा नहीं करता और जिसकी एकमात्र अभिलाषा भगवान की महिमा को प्रसारित करने की रहती है, बिना कठिन श्रम के भक्ति योग के समस्त शुभ फल को प्राप्त करता है। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वशास्त्रादिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तु ते। मदेकबन्धो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्यस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधु तदाई अतिनीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयोसुरा। ये नवा अध्याय भगवान के मोहिनी रूप को वर्णन करता है। मोहिनी मूर्ति पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे भगवान ने बहुत सुंदर रूप प्रकट कर दिया। जब अमृत का मटके को अमृत के पात्र को छीन कर ले गए दैत्य धन्वंतरी के हाथ से और फिर आपस में झगड़ा करने लगे भगवान की योजना से, तो अब भगवान बहुत सुंदर रूप लेकर प्रकट हुए। तो इस अध्याय के करीब पहले 13 श्लोकों में ये वर्णन है कि कैसे मोहिनी अवतार ने अर्थात भगवान ने उन दैत्यों को अपनी तरफ किया, दैत्य उनसे आकर्षित हो गए और फिर भगवान ने उनसे कहा कि जो मैं कहूँ जो मैं करूँ चाहे सही हो या गलत आपको स्वीकार करना है, तो दैत्यों ने उसको स्वीकार किया। तो ये पहले भाग में दिया गया है। फिर 14 से आगे वर्णन किया गया है कि कैसे भगवान देवताओं को ये अमृत दे देते हैं और फिर उसके आगे राहु 24वें श्लोक से लेकर 27वें श्लोक तक वर्णन है कि कैसे राहु बीच में घुस जाते हैं, भगवान उनको मार देते हैं या उनका सर काट देते हैं, मारते नहीं सर काट देते हैं। और फिर अंतिम दो श्लोकों में, जिनमें से एक श्लोक हमने पढ़ा, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने का गुणगान है। तो ऐसे बहुत सुंदर अध्याय है। अब जब मोहिनी अवतार प्रकट हुए और सारे जो दानव थे वो लड़ रहे थे आपस में, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, ये दीजिए, अचानक उन्होंने देखा इतनी सुंदर स्त्री, तो सब भूल गए अपना झगड़ा और सब आकर्षित हो गए। जैसे उन्होंने देखा तो मोहिनी से पूछने लगे, कौन हो तुम, कहां से आई हो, किसकी पुत्री हो? और फिर हमें विश्वास है कि अभी तक तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है, अर्थात वो कह रहे थे कि शायद तुम यहां हम में से किसी को अपना पति चुनने आई हो, तुम्हें जो प्राप्त करेगा बड़ा भाग्यवान होगा। वैसे सब सही कह रहे थे, भगवान को जो प्राप्त करेगा वो सही में भाग्यवान होगा। तो ऐसे थोड़ी चर्चा करने लगे और फिर वो कहने लगे कि देखो ये जो देवता हैं और हम लोग, हम दोनों के एक ही पिता हैं कश्यप मुनि, और फिर भी हम लोग भाई भाई होने के बाद भी हम लोग झगड़ा कर रहे हैं आपस में। तो तुम एक काम करो, ये जो अमृत का पात्र है ये तुम ले लो और तुम सबको बांटो, जैसा तुम कहोगे वैसा करेंगे। तो ऐसे उन्होंने अमृत का पात्र उन्हें दे दिया, भगवान ने बड़ी आसानी से ले लिया। और फिर भगवान ने उनसे पूछा कि अरे मैं तो ऐसे ही इधर उधर विचरण करने वाली एक स्त्री हूं, मतलब कोई मेरे साथ नहीं है, कोई प्रोटेक्शन, कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, तो अर्थात मैं कोई बहुत अच्छे चरित्र की स्त्री तो नहीं लग रही हूं, ऐसे ही मैं घूम रही हूं इधर उधर, और कैसे आप लोग मुझ पर विश्वास कर सकते हो? आपने पूरा विश्वास करके मुझे अमृत का पात्र दे दिया, अर्थात दानवों ने कहा था तुम जो चाहे करो, हमें नहीं भी दो पूरा खुद पी जाओ तो भी ठीक है। तो मोहिनी पूछने लगी कि ऐसे कैसे आपको मेरे ऊपर विश्वास हो गया इतना, ऐसे कैसे आप विश्वास कर रहे हो एक स्त्री के ऊपर जो ऐसे ही केवल घूम रही है, जिसको कोई रक्षा करने वाला नहीं, साथ में नहीं? फिर उन्होंने कहा कि आप जो कह रहे हैं मैं करूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? मैं चाहे सही करूं या गलत, आप कुछ बोलना नहीं, आप विरोध नहीं करेंगे। तो दानवों ने कहा ठीक है, मान गए। देखिए ये काम वासना जब बहुत बढ़ जाती है व्यक्ति के हृदय में, तब वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता, फिर उसको सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे भगवान इन बातों के द्वारा अपना उद्देश्य बता रहे थे दैत्यों को कि देखो मैं तुम्हें धोखा देने वाला हूं। अगर किसी के मन में धोखा देने की इच्छा नहीं है तो वो क्यों कहेगा कि मैं सही करूं या गलत करूं, आप कुछ नहीं कहना, अर्थात वो धोखा देना चाहते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं धोखा देने वाला हूं तुम लोगों को, तुम लोग सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छा निर्णय करूंगा, थोड़ा तुम्हें दूंगा थोड़ा देवताओं को, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे साथ धोखा होने वाला, तैयार हो? दानव हाँ सब तैयार है। एक काम वासना है जो बहुत बढ़ जाती है किसी भी चीज के लिए। वासना, काम वासना का अर्थ केवल स्त्री पुरुष संघ में नहीं है, वासना का अर्थ है कभी किसी के लिए सत्ता की वासना, किसी के लिए धन की वासना, मान प्रतिष्ठा की वासना, इसको वासना कहते हैं। इसीलिए आचार्य जब भजन लिखते हैं तो कहते हैं कि वृंदावन के दर्शन तब होंगे जब हृदय से ये वासनाएं जाएंगी। वो अच्छा भजन है, याद नहीं आ रहा क्या भजन है वो, जिसमें वो कहते हैं कि विषय छाड़िए जब कब शुद्ध हवे मन, तब हम हेरबो श्री वृंदावन। जिस दिन ये विषय वासनाएं हमारे हृदय से चली जाएंगी तो उस दिन फिर हम वृंदावन के दर्शन कर सकेंगे, भगवान को जान सकेंगे। तो यहां दैत्य इतने अंधे हो गए कि भगवान कह भी रहे हैं कि मैं धोखा देने वाला, उन्हें कोई चिंता नहीं, दे दो हम तैयार हैं। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, आप लोग एक तरफ एक लाइन में बैठिए, देवता एक लाइन, थोड़ा दूर बिठाया देवताओं को भगवान ने। और फिर अमृत का पात्र लेकर पहले दानवों के पास गए, दैत्यों के पास गए, तो दानव सब प्रसन्न हो गए कि ठीक है अब हमें मिलेगा। भगवान गए, थोड़ा मुस्कुराए वहां पर, और फिर वहां से लेकर जाकर देवताओं को बांटने लगे। दानवों को दिया नहीं, देवताओं को देने लगे। भगवान ने धोखा दे दिया ये जानते हुए कि दानव योग्य नहीं है अमृत का पान करने के लिए। तो यहां एक ऐसी बात मन में आती है कि भगवान को धोखा देने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, चाहे तो सारे दानवों को ऐसे ही समाप्त कर सकते हैं, फिर धोखा क्यों देते हैं। और यही नहीं, हम लोग देखते कई स्थानों पर भगवान ने धोखा दिया, भगवान धोखा देते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, दिया नहीं लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान धोखा दे रहे। विशेष करके महाभारत में, महाभारत के कई ऐसे प्रसंग हैं जहां भगवान ने धोखा दिया, ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान धोखा दे रहे। जैसे काल यवन का वध, काल यवन भगवान के पीछे भाग रहा है, मारने के लिए भाग रहा है, भागते भागते गुफा में घुस गए, देखा राजा मुचकुंद सो रहे हैं, भगवान को पता है कि अगर उनको किसी ने उठा दिया जला देंगे, तो चुपके खड़े हो गए। अब वो दानव आया, उसने देखा अच्छा कृष्ण सो रहे हैं, जोर से लात मार दी, उठो। जैसे ही राजा मुचकुंद उठे, जो सामने था उसको जलाकर खत्म कर दिया। तो भगवान ने जानबूझकर ऐसे उसको धोखे में डाल दिया। या फिर युद्ध की बात की जाए महाभारत की, तो फिर इतने सारे आरोप लगेंगे भगवान के ऊपर क्योंकि उन्होंने हर जगह पर धोखा दिया। शुरुआत से अगर हम लोग देखें युद्ध में, चाहे अगर भीष्म का वध हो कि जैसे शिखंडी को सामने खड़ा कर देना, शिखंडी खड़े हैं तो भीष्म देव तीर नहीं चलाएंगे, पीछे से अर्जुन को कहना कि तुम तीर चलाओ, ये धोखा देना है भीष्म को। या जरासंध का वध करने गए और एक ब्राह्मण का रूप ले लिया, तीनों ने धोखा दे रहे हैं जरासंध को कि हम तो ब्राह्मण हैं, आपसे युद्ध करना चाहते हैं, तो जरासंध के वध में धोखा दिया, काल यवन के वध में धोखा दिया, भीष्म देव के वध में धोखा दिया गया, द्रोणाचार्य के वध में, वो तो स्पष्ट भगवान ने कहा झूठ बोलो। द्रोणाचार्य को कहा गया, भगवान ने स्वयं भीम से कहा कि उनकी सेना में एक हाथी है जिसका नाम है अश्वत्थामा, मारो उसको। भीम ने मार दिया और फिर जोर जोर से चिल्लाता हुआ घूमने लगा, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया। द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा पुत्र चिरंजीवी है, मर नहीं सकता, लेकिन फिर भी जब इतना जय घोष हो रहा है कि भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, उन्होंने कहा शायद हो सकता है कुछ हुआ हो। तो एक ही व्यक्ति है जो सच बोलेगा और वो है युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानते थे युधिष्ठिर कुछ भी हो जाए कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे कुछ भी हो। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कह रहे हैं, देखो द्रोणाचार्य आएंगे अभी तुम्हारे पास, वो तुमसे पूछेंगे क्या मेरा पुत्र मारा गया, बोल देना हाँ मारा गया। युधिष्ठिर के लिए बहुत बड़ा धर्म संकट, जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और यहां स्वयं भगवान बोल रहे हैं। देखिए धर्म संकट भी कैसा था, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा व्यक्ति बोल रहा हो तो युधिष्ठिर कह रहे थे नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा, जाओ जो करना है कर लो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज झूठ बोल रहे हैं आपको, आपको कहना है कि अश्वत्थामा हां मारा गया, नहीं तो युद्ध समाप्त नहीं होगा। तो द्रोणाचार्य आए और द्रोणाचार्य ने पूछा युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर बताओ क्या मेरा पुत्र मारा गया। तो अब युधिष्ठिर सोच रहे क्या कहूं, तो उन्होंने कह दिया अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा, अश्वत्थामा मारा गया, मनुष्य या हाथी मुझे नहीं पता लेकिन अश्वत्थामा मारा गया। तो भगवान भी बड़े चतुर हैं, वो जानते थे कि युधिष्ठिर सीधे नहीं बोलेंगे कि अश्वत्थामा आपका पुत्र मर गया। तो भगवान ने क्या किया, जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया, नरोवा कुंजरोवा बोलने से पहले ही भगवान ने जोर से शंख बजा दिया। इतनी जोर से शंख बजाया, शंख की आवाज में सुनाई नहीं दिया द्रोणाचार्य को, तो दूर खड़े थे बीच में भगवान, तो शंख बजा दिया, तो द्रोणाचार्य ने इतना ही सुना अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया बस। और उन्होंने युधिष्ठिर से सुन लिया, ये नहीं सुना नरोवा कुंजरोवा, क्योंकि वो शंख बजा दी, यहां भी धोखा दिया भगवान ने। तुरंत उन्होंने सब अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए और ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने अपने प्राण ही त्याग दिए, और उसके बाद उनके निर्जीव शरीर पर तलवार चलाई गई दृष्टद्युम्न के द्वारा। तो ऐसे द्रोणाचार्य के समय किया। कर्ण का बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, ज्यादातर लोग कहते भगवान ने अच्छा नहीं किया कि कर्ण का रथ चल रहा है, अचानक उसका पहिया फंस गया। शाल्व को कहा उन्होंने, उनके रथी थे सारथी, उतरो आप करो, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है। शाल्व तो वैसे पांडवों की तरफ युद्ध करने वाले थे, लेकिन धोखे से उनको यहां लाया गया था, तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, और चले गए छोड़ के। अब वो अकेला उतर कर वो खुद ही निकाल रहा है रथ का पहिया, और उस समय अर्जुन रुक गया, तीर नहीं चला रहा। कृष्ण ने कहा रुके क्यों, मारो उसको। तो कर्ण ने कहा ये कैसा धर्म है, मेरा रथ का पहिया फंसा हुआ है, हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं, आप कैसे मार सकते हैं। कृष्ण ने कहा मारो, मार। तो कितनी जगह पर हम देखते हैं कि श्री कृष्ण ने धोखा दिया, चाहे वो कर्ण हो, द्रोणाचार्य हो, जयद्रथ, ये तो प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। जयद्रथ को छुपा दिया था अर्जुन ने, प्रतिज्ञा कर ली कि सूर्य अस्त होने से पहले मैं मारूंगा, और नहीं मारूंगा तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। तो इसके कई वर्णन हैं। एक वर्णन है कि भगवान ने संध्या के समय सूर्य को छुपा दिया, सब लोगों ने देखा हो अब तो हो गया, चलो अग्नि लगाई गई, अब अर्जुन प्रवेश कर रहे हैं अग्नि में, तो जयद्रथ भी बाहर आ गया हंसता हुआ। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो एक योद्धा को हर समय अपने अस्त्र शस्त्र लेकर जाने चाहिए, तुम अग्नि में प्रवेश कर रहे हो, अस्त्र शस्त्र लेकर जाओ। अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेकर चला, तभी श्री कृष्ण ने फिर से सूर्य को प्रकट कर दिया और कहा देखो अर्जुन, वो रहा सूर्य और ये रहा जयद्रथ, मारो। मारे गए, इतना धोखा। एक दूसरा वर्णन है जयद्रथ के वध का, कि जयद्रथ छुपा हुआ था। ये वर्णन में ऐसा बताया गया कि सबने देखा कि सूर्य डूब गया, लेकिन महाभारत में वर्णन यह है कि सूर्य डूबा ये केवल जयद्रथ ने देखा, क्योंकि सूर्य डूबा नहीं था, सब देख रहे हैं कि सूर्य अभी ऊपर है, और जयद्रथ को पता चला कि सूर्य डूब गया। वो जहां छुपा हुआ था वहां से भागता हुआ आया, हंसता हुआ जोर से हा 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 करता हुआ बाहर आ गया, और सब देख रहे हैं कि क्या हो गया इसको, पागल हो गया ये, हम इतना बचा रहे हैं इसको मरने के लिए, बाहर सीधे अर्जुन के सामने आ गया, क्योंकि वो तो देख रहा था कि सूर्य डूब गया, सीधे अर्जुन के सामने आकर हंसने लगा। उसको देखकर अर्जुन भी हंसने लगा, क्योंकि अर्जुन दिन भर चिंता में था, मारना है मारना है, कहां मिलेगा कहां मिलेगा, और यहां ये खुद सामने आकर हंस रहा है मरने के लिए, तो अर्जुन भी हंसने लगा। श्री कृष्ण ने कहा हंसना बंद करो, मारो पहले उसको, और सारे लोग चिल्ला रहे हैं, दुर्योधन इत्यादि सब उसको चिल्ला रहे, कहां जा रहे हो जयद्रथ, रुको जयद्रथ, क्या। वो सोच रहा है कि ये लोग मेरा गुणगान कर रहे हैं, है ना। जैसे हम लोगों ने एक वो मेंढक की कहानी सुनी है, एक बार दो मेंढक नीचे गिर गए गड्ढे में, जंप मार रहे हैं ऊपर आ नहीं पा रहे हैं, सारे मेंढक बाकी ऊपर खड़े हैं, तो वो उनको बोल रहे हैं कि रहने दो होगा नहीं, प्रयास मत करो, आ नहीं सकोगे, बहुत ऊंचा है। तो एक जो मेंढक था वो तो मर गया उधर ही ये सुनकर, लेकिन दूसरा मेंढक कूदता रहा, ये लोग कह रहे मत कूदो, कुछ नहीं होगा, वो और कूद रहा, अंत में वो बाहर आ गया। तो सभी लोगों ने कहा कि अरे हम लोग इतना तुमको बोल रहे थे कि नहीं होगा, मत करो, फिर भी तुम कूदते रहे और बाहर आ गए, बहुत बड़ी बात है, क्या बात है, आप बताओ कि कैसे ऐसे। क्योंकि साधारणतः जब अपने ही लोग इतने सारे आपको नहीं कह रहे हैं ये सब बेकार है, मत कूदो, तो फिर भी वो कूद रहा है, क्या बात है। तो दरअसल था ये कि वो जो मेंढक था वो बहरा था, सुनाई नहीं देता था उसको, तो वो सोच रहा था ये लोग चिल्ला रहे हो, खाली मुंह देख रहा था उनके, वो चिल्ला रहे हैं, अर्थात ये मुझे कह रहे हैं और तेज, एक और बार करो आ जाओगे, एक और बार करो। तो ऐसे ही जयद्रथ को लग रहा था, सब वहां से चिल्ला रहे हैं दुर्योधन इत्यादि, कहां जा रहे हो, पीछे जाओ, और दुर्योधन जयद्रथ को लग रहा था बहुत अच्छा, तो सामने आ गया अर्जुन ने मार दिया। तो कितने स्थानों पर भगवान ने धोखा दिया, या फिर रामायण में देखें तो बाली वाली का वध किया उन्होंने, भगवान ने पीछे छुप कर धोखा दिया, वाली को पता ही नहीं था रामचंद्र जी खड़े हैं, वो तो सुग्रीव से युद्ध कर रहा था। तो क्यों भगवान धोखा देते हैं, जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं, मोहिनी मूर्ति के रूप में दानवों से ही लिया, दानवों के पास गए और जाकर केवल देवताओं को दे रहे, पिलाने लगे देवताओं, और दानवों ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्होंने वचन दिया था जो भी करोगे हम कुछ नहीं कहेंगे। तो भगवान धोखा इसलिए देते हैं, भगवान के धोखा देने का कारण ये है कि भगवान धर्म की स्थापना करना चाहते हैं। तो धर्म की स्थापना में जो भी चीज आवश्यक हो वो उचित है। जैसे कहा जाता है ना कि हम लोग जब भक्ति करते हैं तो भक्ति करने में जो भी चीज अनुकूल हो, अनुकूलस्य संकल्पः, जो अनुकूल हो उसको स्वीकार करना है कृष्ण भक्ति में। फिर वो चाहे बाहरी दृष्टि से गलत हो, भौतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से गलत हो, लेकिन अगर कृष्ण भक्ति में अनुकूल है उसको स्वीकार करना है। जैसे प्रहलाद महाराज अपने ही पिता के हत्यारे को हार पहना रहे हैं, नैतिकता की दृष्टि से सही नहीं है ये, एक पुत्र के लिए सही नहीं है कि किसी ने आपके पिता की हत्या कर दी, आप हार पकड़ कर खड़े हैं कि ठीक है थोड़ा आपको हार पहनाता हूं, बहुत अच्छा किया, लेकिन भक्ति की दृष्टि से श्रेष्ठ है। तो इसीलिए इस चीज को हमें जानना चाहिए कि भगवान करते हैं क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए जो सही है उसको किया जाता। दूसरी चीज, कई आचार्य अलग अलग उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए जब पुलिस वाले किसी चोर के पीछे भागते हैं, किसी हत्यारे को पकड़ने के लिए भागते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ नियम का पालन करें, कह रहे ये नियम है, उसको जाकर उस संविधान दिखाएं कि देखो तुमने ये धारा के तहत तुमने ये किया। अरे वो तो भाग रहा है, पहले उसको पकड़ना है, नहीं पकड़ा जाता गोली मारी जाती है उसको। कोई आतंकवादी भाग रहा है तो उसको जाकर बताया नहीं जाता है कि देखो आतंक करना हमारे भारत में मना है, गोली मारी जाती है उसको। तो इसीलिए वहां धर्म नहीं, नियम नहीं चलते हैं। तो इसीलिए जो गलत है, अगर जो अधर्मी है, तो उसके साथ अगर धर्म की स्थापना करने के लिए अधर्म किया जाता है, वो भी भगवान के द्वारा और भगवान की अध्यक्षता में, तो वो गलत नहीं है। इस चीज को जानना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति समझा रहे थे कि जैसे मान लीजिए कि आपके घर में चोर आया और वो चोर आगे के दरवाजे से भाग रहा है, तो स्वाभाविक है आप भी आगे के दरवाजे से भागेंगे, लेकिन अगर वो चोर पीछे के दरवाजे से भाग रहा है तो आप उसको पकड़ने के लिए आगे के दरवाजे से नहीं भागेंगे, आपको भी पीछे का रास्ता ही लेना पड़ेगा। तो जो अधर्मी है उसके लिए उधर्म का रास्ता लेना पड़ता है उस अधर्म को समाप्त करने के लिए। तो इसीलिए भगवान ये जो लीलाएं करते हैं ये केवल ये दर्शाने के लिए कि धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापनार्थाय, ये श्रेष्ठ है। और इसके लिए अगर अन्य कुछ चीजें जो बाहरी दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से सही ना भी लगे, लेकिन अगर वो धर्म की दृष्टि से श्रेष्ठ हैं, सच्चे धर्म की स्थापना कर रही हैं, तो फिर उसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान इस तरह से धोखा देते हैं। फिर आगे जब भगवान देवताओं को देने लगे तो सारे जो दैत्य थे वो तो बड़े मोहित थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे, लेकिन राहु जिसकी वैसे भी दुश्मनी है चंद्रमा और सूर्य से, उसने अपना वेश बदल लिया, वस्त्र बदल लिए और वो चला गया देवताओं में अमृत लेने के लिए, क्योंकि वो भ्रमित नहीं हुआ, वो जान गया कि ये मोहिनी जो है ये गलत कर रही है, देवताओं को पिला रही है, ऐसे तो सब खत्म हो जाएगा, तो वो देवताओं की श्रेणी में घुस गया। और उसने भगवान सबको बांट रहे थे तो किसी ने देखा नहीं, भगवान ने भी नहीं देखा और उसको वो अमृत पिला दिया। जैसे ही उसने अमृत का पान किया, सूर्य और चंद्रमा वो जो वहां बैठे थे, वे लोग तो उनके शत्रु हैं, उन्होंने पहचान लिया, कह रहे ये तो राहु है, कैसे इसने अमृत पी लिया। सो जैसे ही भगवान ने ये सुना, उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया, लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक जा चुका था इसीलिए वो मरा नहीं, उसका शरीर खत्म हो गया, नीचे का भाग पूरा खत्म हो गया, लेकिन सर के ऊपर, गले के ऊपर का भाग बना रहा, वो जीवित रहा। तो उस समय क्योंकि उसने अमृत का पाक कर लिया था जो सारे देवताओं ने किया है, इसीलिए ब्रह्मा जी ने उसको एक ग्रह का स्थान दे दिया। इसीलिए राहु एक ग्रह है, हालांकि दैत्य है लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा एक ग्रह का स्थान दिया गया। और क्योंकि उसकी शत्रुता है इसीलिए वो पूर्णिमा इत्यादि के समय कभी कभी प्रयास करता है चंद्रमा को या सूर्य को सूर्य के ऊपर आक्रमण करने का, जिसको हम लोग साधारण भाषा में ग्रहण कहते हैं। तो ऐसे राहु ने वो पी लिया और भगवान ने फिर सब देवताओं को जब बांट दिया तो उन्होंने अपना रूप प्रकट किया। तो यहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस इतने प्रसंग को कहने के बाद कि हालांकि दैत्यों ने, देवताओं ने सब में मेहनत की थी, लेकिन अमृत मिला केवल देवताओं को। और उसको समझाने के लिए ये श्लोक सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देश काल अभिलाषा प्रयास कर्म सब एक जैसा था, सभी वही थे, सबकी अभिलाषा थी कि हमें अमृत मिलेगा, सब मंथन कर रहे थे, सब एक ही स्थान पर थे, समय एक ही था, सब लोग अपने बल का प्रयास प्रयोग कर रहे थे, सब कुछ एक जैसा था, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते फल अलग था। तो इसीलिए प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि हमें आवश्यकता है कि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लें, क्योंकि हमारा जो जीवन है ये एक कागज की नाव की तरह है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि पानी भरा होता है, हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग पानी में कागज की नाव चलाया करते थे, ऐसे बनाकर उसको पानी में, तो कागज की नाव कितनी देर रहेगी, थोड़ी देर रहती, तेज हवा आई या जरा सा पानी का बहाव तेज हुआ तो खत्म हो जाती, कागज की नाव है हल्की सी। हमारा जीवन ऐसे है, लेकिन अगर उस जीवन में हम शरण नहीं लें भगवान की तो फिर ये कागज की नाव एक दिन समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान की शरण लेना बहुत आवश्यक है इस जीवन में। तो इसी चीज को प्रभुपाद तात्पर्य में समझा रहे हैं कि कई लोग होते हैं जो शरण नहीं लेते हैं, कर्मी होते हैं जो भगवान के मंदिर नहीं आते, भगवान की भक्ति नहीं करते, नाम जप नहीं करते, वे शरण नहीं लेते हैं, तो उनके लिए कोई लाभ नहीं है जीवन का, अंततः उनको कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो शरण लेते हैं, जैसे यहां उदाहरण देवताओं का, उन्होंने शरण ली भगवान की, इसीलिए उनको सब अमृत प्राप्त हुआ। तो भगवान की शरण लेना ये बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन गोपीनाथ में बहुत सुंदर लिखते हैं कि किस तरह आपके चरणों में मैं आ गया हूं, आपकी शरण ली है, अमर भरसत उमी, मेरा भरोसा केवल आप पर है, बस आपके शरण आया हूं, आपके चरणों में आया हूं, तो हमारे चरणे आ गया हूं, अब आप मुझे आश्रय दीजिए। तो इस तरह ये समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। और जिसका उदाहरण हम लोग अभी कुछ दिन पहले जब गजेंद्र की चर्चा कर रहे थे तो देख चुके हैं, गजेंद्र सोच रहा था मुझे बहुत कुछ लोग बचा लेंगे। इसी तरह हम लोग भी सोचते हैं, जब हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मुझे बहुत कुछ बचा सकते हैं, मेरे मित्र, मेरे परिवार के जन, मेरे संबंधी इत्यादि, ये मुझे बचा सकते हैं। लेकिन गजेंद्र में देखा हमने, सब खड़े थे, किसने बचा लिया? और गजेंद्र ने ये जाना, गजेंद्र ये जान करके अब कोई बचा नहीं सकता, उसने कृष्ण की शरण ली। तो इसी तरह हमें भी ये जानना चाहिए कि हम लोग चाहे कितना ही अपनी सुरक्षा की व्यवस्था कर लें, बाहर के देशों में व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े यंत्र बने हुए हैं, बड़े आधुनिक यंत्र, कि कुछ नहीं होगा, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं कि इस तरह से कुछ नहीं होगा, बड़ी सुरक्षा, कितनी ही सुरक्षा कर लें, जब तक भगवान के चरण कमलों की शरण नहीं लेंगे, हमारा जीवन उस नाव की तरह है, कागज की नाव, बस जरा सा तेज झोंका आया, काल का समाप्त। इसीलिए इन अंतिम दो श्लोकों में, 28 और 29 श्लोक में, वे बताते हैं कि कैसे हमें भगवान की शरण लेना बहुत आवश्यक है। अर्थात हमें अपनी इच्छा से भगवान का सहयोगी बनना चाहिए, जबरदस्ती नहीं। कभी कभी ये जो लोग भगवान के शरण नहीं आते उनको जबरदस्ती शरण लाया जाता है, मृत्यु के समय भगवान के दर्शन होते हैं उनको काल के रूप में, तो जबरदस्ती नहीं, हम अपनी इच्छा से भगवान के सहयोगी बने, भगवान की जो योजना है उस योजना को हम लोग समझें और उस पे कार्य करें। हर चीज को भगवान की योजना समझें, अच्छी या बुरी, हर चीज को भगवान की योजना समझें। तो इसी तरह अगर हम लोग कार्य करते रहेंगे, इस तरह अगर समर्पण करेंगे भगवान को, तब जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि मानव समाज में बहुत सारी, अगले श्लोक में कहते हैं कि मानव समाज में मनुष्य की धन संपदा तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए ही किए जाते हैं। ये भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब यही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनकी लाभकारी फल सब में बांटे जाते हैं। मतलब कार्य वही रहे, उद्देश्य बदल जाए, भगवान की प्रसन्नता। तो इस तरह इस अध्याय के अंत में सुखदेव गोस्वामी भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने पर जोर देते हैं। इस कथा से बताते हैं कि कैसे देवताओं को भगवान की शरण के कारण लाभ मिला। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहता?